ओम शांति। आत्मिक शुद्धि के लिए विचारों की शुद्धि होना आवश्यक है और विचारों की शुद्धि के लिए आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। कहावत प्रसिद्ध है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अर्थात अन्न का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। किसी ने ठीक कहा है कि आप मुझे उस व्यक्ति का आहार बताइए तो मैं आपको यह बता सकूंगा कि वह व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हम जैसा भोजन स्वीकार करते हैं उसी अनुसार हमारे मन की वृत्तियां उत्पन्न होती है। भोजन तो सभी खाते हैं, पशु पक्षी भी भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने अवश्य देखा होगा जो शाकाहारी पशु होते हैं उनका व्यवहार कैसे होता है और जो मांसाहारी पशु होते हैं उनका व्यवहार कैसे होता है। तो इसे सिद्ध है कि अन्न का प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। एक है सतोगुणी आहार, दूसरा है रजोगुणी आहार और तीसरा है तमोगुणी आहार। वास्तव में तमोगुणी आहार सेवन करने से बुद्धि भी तमोगुणी बनती है। किसी निर्दोष जानवर की हत्या करके हम उसका मांस स्वीकार करते हैं, जैसे कि अपने पेट को कब्रिस्तान बना देते हैं, किसी का खून बहाते हैं, कितना कष्ट आया होगा उस प्राणी को जब उसकी हत्या की गई होगी। कई लोग कहते हैं कि इसमें हमने क्या पाप किया, हमारे सामने तो मांसाहार आया और हमने स्वीकार किया, हमने किसी जानवर की हत्या तो की नहीं, अगर हम करते होते तो शायद कहा जाता कि हाँ हमने पाप किया, लेकिन हमने मांस स्वीकार किया तो किसी ने उस मांस को पकाया, किसी ने उसको बेचा, किसी ने उसे खरीदा, किसी ने उस जानवर को मारा और किसी ने उसको पकड़ा। वास्तव में सभी पर समान पाप चढ़ता है। ये हम कभी नहीं सोचें कि हमने तो मांस केवल खाया, हमने किसी जानवर की हत्या तो नहीं की। तो सभी पर बराबर पाप चढ़ता है, क्योंकि अगर मैं मांस न खाऊं तो कोई पकाए क्यों, अगर कोई पकाए नहीं तो कोई खरीदे क्यों, कोई खरीदे नहीं तो कोई बेचे क्यों, कोई बेचे नहीं तो कोई मारे क्यों, कोई मारे ही नहीं तो कोई पकड़े क्यों। तो समान पाप सब पर चढ़ता है, ये हम कभी ना भूलें। कई सोचते हैं कि अगर हम सब शाकाहारी बन जाएंगे तो इतने सब जानवरों का क्या होगा। हमें वास्तव में ऐसी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति के अंदर इतनी सुंदर बनावट बनी हुई है कि हर एक का भोजन अपना अपना है। हम मनुष्य आत्माएं जिसमें आत्मा इतनी पवित्र और शुद्ध है, जिस आत्मा को ये इतना अच्छा मंदिर मिला हुआ है शरीर का, उस मंदिर में हम क्या भोजन भोग के रूप में रखते हैं, ये हम अपने आप से पूछें। अगर हम तमोगुणी आहार सेवन करेंगे अवश्य उससे मन तमोगुणी बनेगा, हिंसा की वृत्ति मन में उत्पन्न होगी, क्रोध आवेश नफरत वैर दुश्मनी ये सब मन में उत्पन्न होगा अगर हम तमोगुणी आहार सेवन करेंगे तो। कई लोग हैं जो तमोगुणी आहार सेवन नहीं करते हैं लेकिन मदिरा पान करते हैं, वास्तव में ये भी तमोगुणी आहार के अंतर्गत ही आता है। मदिरा पान या सिगरेट पान, ये सब तमोगुणी आहार है। क्या हम मदिरा और सिगरेट और ये तमोगुणी आहार हम देवी देवताओं को चढ़ाएंगे? कभी नहीं। उनका आहार तो कितना शुद्ध होता है, कितना पवित्र होता है। और हम मनुष्य आत्माएं जो उनकी वंशज है, अपने आप से पूछें कौन सा आहार हम सेवन कर रहे हैं। कभी कभी तो यहां तक भी हम सोचते हैं कि भोजन पकाने वाले पर भी निर्भर बहुत बातें करती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति क्रोध में भोजन पकाता है तो उसकी क्रोध की वृत्तियां उस भोजन में भी पड़ेगी, और जो व्यक्ति उस भोजन को स्वीकार करेगा उसके अंदर भी क्रोध की भावना अवश्य उत्पन्न होगी। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दें। कोई व्यक्ति हमेशा होटल में भोजन करता है और कोई व्यक्ति सदा घर में भोजन करता है और कोई मंदिर का प्रसाद स्वीकार करता है। अब चीज तो वही है, लेकिन भावनाओं में अंतर पड़ जाता है, विचारों में अंतर पड़ जाता है। जो व्यक्ति होटल का भोजन स्वीकार करता है उसे अवश्य मन में संकल्प आता है कि एक दिन तो कम से कम घर का भोजन हमें मिले, हमारी पत्नी, हमारी बेटी या माँ हमें भोजन पका करके खिलाए। ये सारी ही आयु होटल का ही भोजन खाना है, क्या ये भी कोई जिंदगी होती है? क्यों नहीं होटल का भोजन सदा अच्छा लगता? क्यों हम घर का भोजन खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं? कारण ये है कि होटल में पकाने वाला व्यक्ति एक नौकरी करता है, भोजन पकाता है। उसके अंदर जो भावनाएं माँ या बेटी या बहन में या पत्नी में होगी वो तो उस नौकर में नहीं होगी। तो भोजन पकाएगा क्योंकि उसकी वह नौकरी है, उसको उससे कमाई है। लेकिन घर में पकाने वाला व्यक्ति उस भावना से पकाएगा, उस स्नेह से पकाएगा, उस सच्ची दिल से पकाएगा, उस संबंध से पकाएगा कि आज मैं अपने पिता को क्या भोजन खिलाऊं, आज मैं अपने पति के लिए क्या पकाऊं। तो अवश्य उस व्यक्ति की याद में वो रहकर भोजन पकाएगा। तो होटल के भोजन से घर का भोजन हजार गुना अच्छा है, क्योंकि पकाने वाले की वृत्ति में बहुत अंतर पड़ जाता है। लेकिन घर के भोजन से भी हम मंदिर का प्रसाद लेकर के आते हैं, उसकी भावना और बढ़ जाती है। अगर प्रसाद नीचे गिर भी जाएगा तो भी हम उसको दोबारा उठाकर सिर पर रखकर, आंखों पर रखकर के उसको स्वीकार करेंगे और थोड़ा सा ही लेंगे, सबको बांटेंगे, क्योंकि अंदर में ये भावना होती है कि ये प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है, ये बहुत ही शक्तिशाली भोजन है, इसीलिए थोड़ा ही स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मन इससे शुद्ध होगा। और अगर गिर भी जाएगा तो भी उसको उठाकर स्वीकार करेंगे। अब वही चीज हम घर में भी पकाते हैं, वही चीज हम होटल में भी खा सकते हैं, लेकिन भावना में देखिए कितना अंतर पड़ जाएगा। तो हम अपने भावनाओं को समझें और उसी अनुसार अपने भोजन का भी परिवर्तन करें। हमें मांसाहारी भोजन नहीं स्वीकार करना चाहिए अगर हम आत्मिक शुद्धि चाहते हैं तो, क्योंकि आत्मा की शुद्धि होगी ही तब जब आहार की शुद्धि होगी। आहार की शुद्धि पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, यहाँ तक कि बनाने वाले ने भी किस वृत्ति से भोजन पकाया उसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे बतलाया कि अगर क्रोध में आकर भोजन पकाया अवश्य उसका विचार मेरे मन में भी आएगा। शायद आप इस बात को जानते होंगे एक कहावत, एक कहानी के रूप में प्रसिद्ध है, जैसे कहा जैसा पानी वैसी वाणी। एक महान संत किसी जंगल से गुजर रहा था और अचानक उसे प्यास लगी। एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसे पूछ लिया कि यहाँ कोई कुआं है। उस व्यक्ति ने कहा थोड़ी सी दूरी पर एक कुआं है, आप वहां से पानी भर सकते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक बाल्टी रखी थी, रस्सी से उसने बाल्टी द्वारा पानी खींचा और पानी पीने के बाद उसे संकल्प आया कि यहाँ चारों तरफ तो कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, यह कौन पानी पीता होगा, ये बाल्टी और रस्सी ऐसे ही रखी है, चलो मैं इसे ले जाता हूँ, दूसरे स्थान पर जाऊंगा, शायद वहां कुआं हो और बाल्टी और पान और न हो रस्सी, तो मैं ये ले जाता हूँ, वहां काम आ जाएगी। और बाल्टी और रस्सी लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद इसे संकल्प आया कि ये तो चोरी है, मैंने ये क्यों उठा लिया, न जाने किसकी बाल्टी होगी किसकी रस्सी होगी, ये संकल्प मेरे मन में क्यों आया, मैं तो एक संत हूँ, ये संकल्प कभी नहीं आना चाहिए मुझे, अवश्य इसके पीछे कोई राज होगा। तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उनसे पूछा कि यह कुआं किसने बनवाया था, तो उसने बतलाया कि यह कुआं किसी चोर ने बनवाया था। बस इस राज का इसको पता चल गया, क्योंकि उस चोर का धन लगा उस कुएं बनवाने में, और जैसे ही इसने उस कुएं से पानी पिया, उसे चोरी करने का संकल्प आया। तो देखिए, जैसा पानी वैसी वाणी, पानी का भी असर मन पर होता है, वचन पर होता है, तो अन्न का असर तो और भी अधिक होगा। लेकिन आज की दुनिया में हम कहां इन बातों पर ध्यान देते हैं, बस जो आया खा लिया। वैसे तो आज डॉक्टर्स हमें बतलाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो उस हिसाब से तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, इतना कार्बोहाइड्रेट्स हो, इतना स्टार्च हो, इतनी कैलोरीज हो, शरीर के लिए क्या भोजन होना चाहिए, हम उस पर कितना ध्यान देते हैं। लेकिन क्या ये भी हमने ध्यान दिया कि वो किस वृत्ति से भोजन पकाया जाता है और किस प्रकार का भोजन सेवन होता है। हम समझते हैं मांस खाने से ही हमें शक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जिन देशों में मांस अधिक खाया जाता है, वहां के लोग अधिक बीमार हैं। आज कितने आर्थराइटिस के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स निकाले, क्योंकि वे अधिक मांस खाते हैं। शाकाहारी व्यक्ति अधिक जीवन जी सकता है। आज जितने भी आप शाकाहारी जानवर देखिए, उनकी कितनी लंबी आयु होती है, सबसे लंबी आयु तो हाथी की होती है और वह शाकाहारी है। घोड़ा शाकाहारी है, कितनी उसमें शक्ति है। और इंसान अगर सोचे कि मांसाहार से ही शक्ति आ सकती है, शायद ये उसकी भूल है। तो अगर हम अपने आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, विचारों की शुद्धि चाहते हैं, तो अवश्य हमें अपने आहार पर ध्यान देना होगा। सत्वगुणी भोजन सबसे शुद्ध भोजन है। जो चीज हमें प्रकृति देती है, हम उसका सेवन कर सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इतना श्रेष्ठ भोजन हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, हम उसको न सेवन करके मांस को सेवन करते हैं। एक कहावत प्रसिद्ध है, शायद आप जानते होंगे, कहा गया है कि जो घास खाकर मांस बढ़ाता, उसका भी एक दिन कत्ल होता है। तो जो मांस खाकर मांस बढ़ाएगा, उसका क्या हाल होगा। अर्थात अब हम निर्दोष जानवरों की हत्याएं करते हैं और वो तो घास खाते हैं, एक बकरी घास खाती है, तो इन निर्दोष जानवरों की हत्या करते, जो घास खाते, उनका भी एक दिन कत्ल होता है। तो अगर मांस खा करके हम अपने मांस को बढ़ाएंगे तो क्या हाल होगा। अवश्य धर्मराजपुरी में हमें बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक निर्दोष जानवरों को कष्ट देकर के उनका मांस हमने स्वीकार किया है। तो इसीलिए आहार की बहुत बड़ी शुद्धि चाहिए अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं। तो क्या हम अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, जैसे कि मुर्दों को हम अपने पेट में दफना रहे हैं? वैसे भी मनुष्य जो परमात्मा की सबसे ऊंची रचना है, उस मनुष्य को जानवर खाने का आदेश बिल्कुल नहीं है। हमें तो जानवरों से प्रीत रखनी चाहिए। प्रकृति की हर चीज से हमारी प्रीत है, पशु पक्षियों से भी हमारी प्रीत है, और जब हम उनसे सच्ची प्रीत रख करके उनको भी जीने का अधिकार देंगे, तब हम वातावरण को भी अनुकूल बना सकेंगे, इकोलॉजी को भी हम श्रेष्ठ बना सकेंगे। अब जितना ही हम आहार पर ध्यान दें, उतने ही हम और बातों पर भी ध्यान दें। आज हम सिगरेट पीते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या नतीजा होगा इस सिगरेट पीने का। कई लोग तो समझते हैं यही तो मॉडर्न लाइफ है, सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस खाना, यही तो जीवन है। अब कोई व्यक्ति आज एक सिगरेट पीता है, कल दो सिगरेट पीता है, परसों आठ सिगरेट पीता है, धीरे धीरे उस सिगरेट का वो आदि हो जाता है, और धीरे धीरे वो भी स्थिति आती है जब सिगरेट वो नहीं पीता लेकिन सिगरेट उसको पीती है, या शराब वो नहीं पीता लेकिन शराब उसको पीती है, क्योंकि उसके सारे शरीर को बर्बाद कर देती है। आज कई हमने व्यक्ति देखे हैं जो फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर उन्हें ये भी कहते हैं कि सिगरेट पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो। वे कहते हैं मर जाएंगे लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे, मरना पसंद है। एक बार एक किस्सा आया था अखबार में कि अमेरिका में किसी ने सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट दी, और एक छोटा सा उन्होंने एक रूप रखा कि सिगरेट की पैकेट का जो नाम दिया वो था डेथ, मृत्यु, और ये सोचा कि शायद यह पैकेट नहीं बिकेगा, यह ब्रांड नहीं बिकेगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि डेथ नाम सुन करके और भी अधिक युवकों ने वह सिगरेट के पैकेट लिए, और एक ही दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो आप देखिए कि लोग मरने से नहीं डरते लेकिन अपने व्यसनों को, अपने बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, और मनुष्य का अमूल्य जीवन यही बर्बाद हो रहा है। एक छोटी सी सिगरेट, 3 इंच की सिगरेट, और 6 फीट का इंसान उसी का गुलाम, है ना आश्चर्य की बात। तो हम केवल इंद्रियों के ही गुलाम नहीं बन रहे हैं लेकिन व्यसनों के भी गुलाम बन रहे हैं। आज मनुष्य ड्रग्स लेता है, क्या नहीं वो सेवन करता है, अपना जीवन भी बर्बाद कर रहा है, अपने परिवार का भी जीवन बर्बाद कर रहा है, समाज को भी पतन की ओर ले जा रहा है, देश और सारे विश्व की गिरावट इसी के कारण हो रही है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब क्या हो रहा है हमारी दुनिया में। अब इसका एक ही मात्र इलाज है कि हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानें, अपने पिता परमात्मा को पहचानें, और उनसे हम योग रखें तो आत्मा को सच्चा नशा मिलेगा। कहा जाता है सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, और वह नशा है ईश्वरीय नशा। आत्मा उस परमात्मा की याद में खो जाए और उनके ही गुणों का रसा स्वादन करे तो अनुभव होगा कि प्रेम, शांति, सुख आनंद जो आत्मा की असली शक्तियां हैं, वह फिर से अनुभव होगी और उस नशे का अनुभव आत्मा कर सकेगी। और जब ये ईश्वरीय नशा या नारायणी नशा आत्मा को चढ़ जाता है तो फिर बाकी नशे फीके लगते हैं। जैसे आप कोई मीठी चीज खा लीजिए तो उसके खाने के बाद चाहे कितनी भी टेस्टी चीज क्यों नहीं आप खाएं तो भी वो आपको फीकी लगेगी, क्योंकि मीठी चीज का आपने पहले सेवन कर लिया। इसी प्रकार परमात्मा की याद का एक रसा स्वादन अगर आत्मा ने कर लिया तो उसकी भेंट में ये इंद्रियों का रस फीका लगने लगता है। और इन इंद्रियों के रस के पीछे आज इंसान इनका गुलाम बनता जा रहा है। तो अगर इस गुलामी से हम छूटना चाहते हैं तो ईश्वर का रस अनुभव कीजिए, और उस रस को स्वीकार करने से, उसका पान करने से ये भौतिक रस अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अवश्य इसमें समय तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये एक दिन में ही परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन एक लक्ष्य रखिए और लक्ष्य के मुताबिक लक्षण अपने आप आते हैं। ये लक्ष्य रखिए कि हमें सतोगुणी आहार स्वीकार करना है, जो प्रकृति की देन है उसे ही हमें स्वीकार करना है, वो सतोगुणी आहार है। रजोगुणी आहार भी जहां तक हो सके उसकी परहेज रखिए। रजोगुणी आहार अर्थात बहुत खट्टी या तेल वाली, बहुत मिर्ची आदि आदि, ये सभी रजोगुणी आहार में आता है, तो ये भी जहां तक हो सके उसकी परहेज रखें। लेकिन सतोगुणी आहार, शाक सब्जियां दूध, ये सब सतोगुणी आहार में आता है, जिसके सेवन करने से शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता है और साथ साथ आत्मा भी शक्तिशाली होती है। और ये भगवान ने हमारे लिए बहुत मात्रा में उपलब्ध कराया है। तो लक्ष्य रखिए, अंदर में संकल्प कीजिए, एक दृढ़ता मन में लाइए कि मुझे आत्म शुद्धि करनी है। उसके लिए मन को शुद्ध संकल्प देने हैं और उसके लिए आहार की शुद्धि रखनी है। तो सतोगुणी आहार स्वीकार करना है, कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है, उसके बजाय परमात्मा की याद का नशा अपने अंदर अनुभव करना है। तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ये जो भौतिक नशे हैं वो अपने आप समाप्त होते जा रहे हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक बढ़िया चीज आपको मिल जाए तो उसकी भेंट में घटिया चीज अपने आप आपसे छूटती जाएगी। तो ये एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ उपलब्धि है, परमात्मा की याद का नशा। उससे आत्मा के सर्व संबंध, उससे ही सर्व प्राप्तियां, और आत्मा परमात्मा की याद में खो जाए और शांति प्रेम सुख आनंद का रसा स्वादन करे। तो अनुभव कहता है कि वो रस अपने आप फीके लगने लगेंगे और हम भोजन करेंगे, क्योंकि हमें जीना है। ऐसे नहीं कि हम भोजन के लिए जी रहे हैं, लेकिन जीने के लिए हमें भोजन करना है। तो दो रोटी ही पेट को देनी है और ठंडा पानी पीना है। आज की दुनिया में लोग ठंडा खाते हैं, गरम पीते हैं, होना चाहिए विपरीत। गरम खाइए, ताजा खाइए और ठंडा पीजिए, तो देखिए सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, मन भी शक्तिशाली रहेगा और आत्मा सच्ची स्फूर्ति और खुशी का अनुभव करेगा।